नमस्कार, आप सुन रहे हैं संयुक्त राष्ट्र समाचार सचिन गौर से। 14 जून 2019 के इस कार्यक्रम में सुनिए, युगांडा में भी फैल रहा है इबोला का प्रकोप, अब तक 2 की मौत, यूएन एजेंसियों ने रोकथाम और इलाज के प्रयास तेज किए। दुनिया के भविष्य को बेहतर बनाने में सक्षम है समावेशी और सुरक्षित डिजिटल तकनीकें। एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता की स्थिति वाले लोगों के मानवाधिकारों को पहचाने जाने की पुकार। और दक्षिण सूडान में अंधेरे में डूबे अस्पतालों में होगा सौर ऊर्जा का उजाला। यूएन मिशन में भारतीय बटालियन ने लगाए 16 विशाल सौर ऊर्जा पैनल। अब समाचार विस्तार से। युगांडा में इबोला वायरस से 2 लोगों की मौत होने के बाद संयुक्त राष्ट्र की मानवीय राहत एजेंसियां स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम कर रही हैं। पड़ोसी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में पहले से ही बड़े पैमाने पर इबोला फैला हुआ है और अब युगांडा में भी इसके मामले सामने आए हैं। युगांडा में प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार 5 साल के एक लड़के और उसकी 50 वर्षीय दादी की मौत हुई है। एहतियात के लिए उठाए जाने वाले कदमों के तहत सामूहिक रूप से एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। मरीज के संपर्क में आने वाले लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों को रोकथाम के लिए टीके लगाए जा रहे हैं। साथ ही संबंध में चिंता दूर करने और अफवाहें ना फैलने देने के लिए रेडियो पर जरूरी सूचना प्रसारित की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO के प्रवक्ता तारिक याज्रेविच ने बताया कि इस समय UN एजेंसी और युगांडा सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं।
Well, we received the information from the Ministry of Health of Uganda that the second of 3 persons who were confirmed Ebola positive.
हमें युगांडा सरकार से जानकारी मिली है कि जिन 3 लोगों को इबोला होने की पुष्टि हुई थी उनमें से दूसरे की मौत हो गई है। स्पष्ट है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ जल्दी से जल्दी उन इलाकों में जाना चाहिए जहां इन मामलों का पता चला था, ताकि उनके संपर्क में आए लोगों की निगरानी की जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रवक्ता तारिक याज्रेविच। एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता की स्थिति वाले लोगों को अपने जीवन में बहुत से अवरोधों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके मानवाधिकार कमजोर होते हैं। 13 जून को एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस पर इस स्थिति वाले लोगों को पहचानने, उनके साथ एकजुटता दिखाने और उनके लिए समर्थन जुटाने के प्रयास किए गए। रंगहीनता एक दुर्लभ, गैर संक्रामक और आनुवांशिक रूप से जन्म के समय से ही मौजूद रहने वाली स्थिति है जो दुनिया के हर देश में पाई जाती है। रंगहीनता की वजह से बालों, त्वचा और आंखों में रंजकता यानी पिगमेंटेशन मेलानिन की कमी हो जाती है, जिससे सूरज और तेज रोशनी में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि रंगहीनता की स्थिति वाले अधिकांश लोग मंद दृष्टि की समस्या से पीड़ित होते हैं और उन्हें त्वचा का कैंसर होने का खतरा भी ज्यादा होता है। इस स्थिति वाले लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में बहुत से अवरोधों का सामना करते हैं। कुछ देशों में तो उन पर हमले भी किए जाते हैं और उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। हर साल 13 जून को दुनिया भर में लोगों को याद दिलाया जाता है कि रंगहीनता की अवस्था में रह रहे लोगों को भी सामान्य और सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार है। इस साल रंगहीनता जागरूकता दिवस की थीम स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रांग है। डिजिटल तकनीकों से मानव कल्याण और सशक्तिकरण में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं, लेकिन उनसे नई चुनौतियां भी पैदा हुई हैं। डिजिटल जगत की चुनौतियों और संभावनाओं पर आधारित एक नई रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें कहा गया है कि डिजिटल भविष्य को और सुरक्षित और समावेशी होना चाहिए। डिजिटल तकनीकों ने जिस अभूतपूर्व गति से रोजमर्रा के जीवन को व्यापक पैमाने पर बदल डाला है, उसके अनुरूप साइबर प्रणाली की निगरानी और देखरेख के लिए ढांचा तैयार नहीं हो पाया है। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने इसी उद्देश्य से 1 साल पहले एक पैनल का गठन किया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि डिजिटल तकनीक के सहारे UN के टिकाऊ विकास एजेंडा को कैसे हासिल किया जा सकता है, डिजिटल तकनीक मानवाधिकारों और सुरक्षा से कैसे जुड़ी है और समाज के विभिन्न पक्षों में डिजिटल सहयोग को कैसे संभव बनाया जा सकता है। एक ऐसे समय में जब दुनिया में आधी आबादी के पास इंटरनेट तक पहुँच नहीं है, पैनल ने 2030 तक किफायती रूप से इसे सभी तक पहुँचाने की अपील की है। साथ ही डिजिटल तकनीकों के सहारे स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने रिपोर्ट जारी होने पर एक कार्यक्रम में कहा,
We need forms of cooperation. We need forms of governance based on cooperation. We need limited and smart regulation.
हमें सहयोग के स्वरूपों की जरूरत है, हमें संचालन व्यवस्था में स्वरूपों की आवश्यकता है, हमें संचालन व्यवस्था पर आधारित सहयोग के स्वरूप चाहिए, हमें सीमित और स्मार्ट नियम चाहिए, और ये सभी पक्षों को एक साथ लाकर ही किया जा सकता है। इस रिपोर्ट का नाम द एज ऑफ डिजिटल इंटरडिपेंडेंस है। इस रिपोर्ट के लिए गेट्स फाउंडेशन की मलिंडा गेट्स और अलीबाबा कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन जैक मा की सह अध्यक्षता में एक 20 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया था। हिंसा और संघर्ष प्रभावित इलाकों में रह रहे हर 5 व्यक्तियों में से एक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में और अधिक निवेश किए जाने की अपील की है। एक नई रिपोर्ट ब्रिटेन के मेडिकल जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित हुई है, जो संयुक्त राष्ट्र से मिले आंकड़ों पर आधारित है। रिपोर्ट दर्शाती है कि प्रभावित लोगों में 22% ऐसे हैं जो मानसिक अवसाद, घबराहट या हादसे के बाद सदमे का शिकार हैं। 2016 में 37 देश संघर्षग्रस्त थे, यानी दुनिया की आबादी का 12% हिस्सा हिंसा प्रभावित इलाकों में रह रहा है, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। हिंसा और संघर्ष की वजह से 6,90,00,000 लोग जबरन विस्थापन का शिकार हुए हैं, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद विस्थापित होने वाले लोगों की ये सबसे बड़ी संख्या है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित लोगों की कठिनाइयों को पहचाने जाने और फिर उनके इलाज और देखभाल की जरूरत होती है। मानसिक समस्याओं की वजह से कई बार पीड़ितों को रोजमर्रा के काम करने में भी मुश्किलें पेश आती हैं। अधिकांश पीड़ित इराक, जॉर्डन, फलस्तीन के पश्चिमी तट और गाजा पट्टी, लेबनान, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान सहित अन्य देशों में रह रहे हैं। डिप्रेशन की समस्या से पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा प्रभावित होती हैं। विकलांगता के शिकार लोगों के अधिकारों को वास्तविकता में अमल में लाना न्यायोचित है और हमारे साझा भविष्य में व्यवहारिक निवेश भी। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर हुई संधि के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने विकलांगों के समावेशन को टिकाऊ विकास एजेंडे की दृष्टि से भी अहम बताया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक कामकाजी दुनिया में विकलांगों को बाहर रखने पर देशों को उनके सकल घरेलू उत्पाद GDP में 7% तक का नुकसान हो सकता है। UN प्रमुख ने माना कि मानसिकताओं, कानूनों और नीतियों को बदलने के लिए अभी एक लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन विकलांगों के लिए अधिकारों, अवसरों और गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए इसकी ओर कदम बढ़ाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि विकलांगों का समावेशन सुनिश्चित किया जाना उनका एक बुनियादी मानवाधिकार है। पिछले साल दिसंबर में पहली बार विकलांगता और विकास के विषय पर UN रिपोर्ट को जारी किया गया था। इसके जरिए 3 मुख्य चुनौतियों को रेखांकित किया गया: गरीबी का असंगत स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार तक उनकी पहुँच न होना, और निर्णय लेने की प्रक्रिया और राजनीति में उनकी हिस्सेदारी न होना। महासचिव गुटेरेश ने कहा कि विकलांगों का समावेशन टिकाऊ विकास लक्ष्यों के 2030 एजेंडा के भी केंद्र में है। उन्होंने कहा कि जब हम विकलांगों के रास्ते में आने वाली नीतियों, पूर्वाग्रहों और बाधाओं को हटाते हैं तो उसका लाभ पूरी दुनिया को मिलता है। जिनीवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रम संगठन के महानिदेशक गाय राइडर ने कामकाज के एक ऐसे भविष्य के निर्माण की अपील की है जिसमें सभी के लिए सामाजिक न्याय संभव हो। सोमवार को शुरू हुए 108वें श्रम सम्मेलन को श्रम आंदोलन की विश्व संसद भी कहा जाता है और इसे UN एजेंसी के शताब्दी वर्ष के दौरान आयोजित किया जा रहा है। श्रम संगठन का शताब्दी वर्ष और ये सम्मेलन ऐसे समय में आयोजित हो रहे हैं जब दुनिया में कामकाज के तरीकों और उसके भविष्य से जुड़ी एक गहरे बदलाव की प्रक्रिया जारी है। अच्छा और उपयुक्त कार्य और लैंगिक समानता वो महत्वपूर्ण सीढ़ियां बताई गई हैं जिनसे होकर गरीबी का उन्मूलन किया जा सकता है और देशों में व्याप्त असमानता को कम किया जा सकता है। विश्व में 2 अरब लोग जीवन यापन के लिए अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर हैं और 78 करोड़ लोग गरीबी में जीवन जी रहे हैं। श्रम संगठन के आंकड़ों के मुताबिक 2016 में दुनिया में करीब 2.5 करोड़ लोग जबरन मजदूरी के लिए विवश थे। इनमें से 1.5 करोड़ लोगों का शोषण निजी क्षेत्र में हो रहा था। UN एजेंसी का मानना है कि अधिकांश मामलों में महिलाओं और लड़कियों से जबरन मजदूरी कराई जाती है। दक्षिण सूडान के जोंगलेई राज्य में स्थित एकमात्र सक्रिय स्वास्थ्य केंद्र बोर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अब अंधेरे में मरीजों की देखभाल करना, संभव हो गया है। अभी तक अस्पताल के भीतर और बाहर घुप अंधेरा रहता था, जिसने स्वास्थ्य कर्मियों का काम बहुत मुश्किल बना रखा था। अब तमाम कर्मचारियों को उससे छुटकारा मिल गया है। ये परिवर्तन दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र के मिशन में सक्रिय भारतीय बटालियन के प्रयासों की बदौलत संभव हो सका है। इस बटालियन में 16 ऐसे विशाल सौर ऊर्जा पैनल स्थापित किए गए हैं, जिनसे अस्पताल को रोशनी मिलना संभव हो सका है। ये रोशनी लैंप मुख्य रूप से आपात स्थिति वार्ड, अन्य सघन चिकित्सा वार्डों, जच्चा बच्चा की अस्पताल करने वाले वार्डों और चिकित्सा सामग्री वाले इलाकों में लगाए गए हैं। दक्षिण सूडान में नेशनल ग्रिड पूरे देश के 1% से भी कम हिस्से को ही बिजली उपलब्ध करा पाता है। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।